ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। भागवतम का शुरू होता है भगवान को प्रणति निवेदन करने के पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम करके इस भागवतम का पाठ शुरू करता हूं। भावना ऐसी ही है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम का मतलब है भगवान के विषय के चर्चा या कथा, भागवत कथा। भगवान के विषय पर जो विचार, जो चर्चा, वो है श्रीमद् भागवतम। वैसे भागवतम है पूरा सारे पुराणों में से श्रेष्ठ पुराण, महापुराण। वेद का दो धारा है, एक है उपनिषद और दूसरी है पुराण। उपनिषद श्री गुरुदेव के चरण कमल के निकट बैठकर, उपनिषद अर्थात श्री गुरुदेव के चरण कमल के नजदीक बैठ के जो ज्ञान लाभ होता है, जो जिस ज्ञान को प्राप्ति होता है, उसे उपनिषद कहा गया है। और पुराण भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में जो वर्णन, वो है पुराण। वैसे 108 उपनिषदों हैं और 18 पुराण हैं। सारे उपनिषदों में श्रेष्ठ उपनिषद है भगवद गीता या गीतोपनिषद, भगवद गीता रूपी उपनिषद। भगवद गीता उपनिषद क्यों है? क्योंकि आदि गुरु श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के चरण कमल के नजदीक बैठ के अर्जुन इस ज्ञान प्राप्त हुए। यहां आदि गुरु मुख्य गुरु, प्रधान गुरु, सारे गुरुओं का गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिष्य बनाकर इस ज्ञान प्रदान किए थे। इसलिए भगवद गीता है गीतोपनिषद। केवल गीतोपनिषद ही नहीं, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद का तुलना एक गाय से की गई है। सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद है एक गाय जैसी, और उस गाय को दोहन करने वाला कौन? श्री कृष्ण। दुग्धा गोपाल नंदन और गाय दूध देती है पर किसके वजह दूध देती है वत्स बछड़े के लिए और यहां इस उपनिषद रूपी गाभी को दूध देने दूध उपनिषद रूपी गाभी को बछड़ा है अर्जुन और उस दूध को दोहन किए हैं गोपाल नंदन श्री कृष्ण और वत्स पार्थ और सुधीर भोक्ता इस विशेष दूध कौन पीते हैं जो सुधी हैं धी का मतलब बुद्धि विचार करने का शक्ति जिनका विचार शक्ति सुंदर है सुधी वो है इस वो व्यक्ति ही केवल इस दूध गीता रूप अमृत पीने के लायक है जिसका बुद्धि सुंदर अर्थात श्रेष्ठ नहीं है वो गीता को समझ नहीं पाएंगे ना तो वो गीता के नजदीक भी आएंगे ज्यादा से ज्यादा वो घर में एक गीता रख देंगे और सुबह शाम माथा टेकेंगे बल्कि गीता को केवल गीता को जो गीता का जो उपदेश है ये भगवान के मुखारविंद से निश्चित वाणी है इस ज्ञान सारे ज्ञान की सारे ज्ञानों की सार है और सारे ज्ञान की स्रोत है तो एक तरह उपनिषद के श्रेष्ठ में उपनिषदों में श्रेष्ठ उपनिषद है भगवद गीता वो है सारे वेदों की सार निचोड़ और सारे पुराणों में से है भागवत पुराण इसका भी वर्णन ऐसे हुआ है निगम कल्पतरुर गलितं फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूवि भावुका श्रीमद् भागवत क्या है सारे वेद हैं एक कल्प वृक्ष जैसी निगमा कल्पतरुर वेद रूप कल्प वृक्ष की फल केवल फल ही नहीं सुपक्य फल एकदम पका हुआ सबसे मधुर फल और वो फल भी सुख मुखाद अमृत द्रव समझुतम सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंद का अमृत से उसका मिलन हुआ है मिश्रण हुआ है ये फल सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम जो अमृत मुखारविंद का जो अमृत है उससे संयुक्त हुआ है मिला हुआ है उसके द्वारा वो और भी मधुर बन गया है सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम जैसे भगवद गीता में बताया गया है ये वो भी वेद का निचोड़ है सर्व उपनिषदों गावो और उस गाय का दूध जैसी है ये सारे वेद रूप अमृत का सारे वेद रूप गाभी का गाय का अमृत रूप दुग्ध है भगवद गीता और वो दूध कौन पीते हैं सुधीर भोक्ता जो सुंदर धीमान जिनका बुद्धि बहुत ही उन्नत है जिसका बुद्धि सुंदर है जिसका बुद्धि बहुत ही ऊंचे कोटि के हैं वैसे ही व्यक्ति भगवद गीता रूप अमृत पीने के लायक है और श्रीमद् भागवतम के पीने के लायक ये फल को रस आस्वादन करने वाला कौन है पीवत भागवतम, पीते हैं इस भागवत रूप अमृत, पीवत भागवतम मुहुरह, मुहुरह मुहु मतलब निरंतर, हर समय, निरंतर मतलब कोई रुकावट बिना, निह अंतर, कोई भी रुकावट नहीं, एकदम कंटिन्यूअसली। मुहुरह रसिका, कौन? जो रस जो आस्वादन कर सकते हैं। रस आस्वादन का मतलब रस है आनंद प्राप्ति के आधार, ये रस के मिश्रण से ही आनंद का उपलब्धि होता है। 12 रस हैं, जिनमें से 5 हैं मुख्य और 7 हैं गौण। मुख्य मतलब प्रधान रस हैं 5, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, और 7 हैं गौण अर्थात सेकेंडरी। तो वो 7 कौन हैं, कौन सी रस हैं? हास्य, अद्भुत, वीर, रौद्र, विभत्स, भयानक और करुण। ये 5 है स्थाई, 5 जो मुख्य रस है वो स्थाई भाव है, उसका परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि और 7 जो गौण भाव है वो संचारी है, उसका परिवर्तन होता है, मिश्रण होता है, मिलन होता है, और उसके प्रभाव से रस आस्वादन होता है। और वो रस कौन से रस है? वो रस है भक्ति रस, प्रेम रस, और उस रस को जो आस्वादन करने के लायक है उस उन्हें रसिक कहा जाता है। जो रसिक व्यक्ति है, जो जानते हैं कि रस को आस्वादन कैसे करना चाहिए, वो व्यक्ति ही केवल इस भागवतम भागवत रूप अमृत को निरंतर पान करते हैं। मुहुरह रसिका भूभि भावुका, भूभि इस धरती पे जो भावुक हैं, जो भाव के द्वारा प्रभावित हैं, वो व्यक्ति इस रस को आस्वादन करने के लायक। अब हम श्रीमद् भागवतम के ऊपर, भागवत के चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं। श्रीमद् भागवतम का सूचना हुआ था जब सृष्टि के समय ब्रह्मा जी को, जब ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए थे अज्ञान के द्वारा, यद्यपि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से ही आए हैं, ब्रह्मा जी का जन्म भगवान का नाभि कमल से होता है। साधारण व्यक्ति का जन्म कैसे होता है? मां की गर्भ से, और मां के साथ संयोग कैसे रहता है? नाभि के द्वारा। बच्चा का संयोग मां के साथ नाभि के द्वारा संयोग होता रहता है। पिता माता के माध्यम साधारण व्यक्ति के जन्म होता है, बल्कि ब्रह्मा जी का जन्म एकदम डायरेक्टली भगवान के नाभि से हुआ था, भगवान से ब्रह्मा जी आए थे। बल्कि इस भौतिक जगत में जो भी आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ब्रह्मा जी तक सब व्यक्ति इस भौतिक जगत में अज्ञान के अंधकार में रहते हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म के अनुसार सभी व्यक्ति शूद्र है, मतलब अज्ञान में है, ज्ञान नहीं रहता है। भौतिक जगत में जो भी आते हैं अज्ञान में ही आते हैं। तो ब्रह्मा जी भी अज्ञान में थे, उन्होंने यद्यपि देखा, आंखें खोला, ऐसा लगा कि नींद से जाग उठा, पर उनको पता नहीं था वो कौन है, वो कहां से आए हैं और उनको क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी सोचने लगा मैं कौन हूं। अचानक आंखें खोला और देखा एक कमल के ऊपर बैठे हैं, और वो कमल कहां है, वो कमल गर्भ सागर में, वो कमल बस और कुछ नहीं था, एक सागर, एक विशाल सागर, और उस सागर के सागर में केवल एक कमल का पुष्प, और उस कमल में बैठे हुए हैं, बैठे हुए अपने को देखा ब्रह्मा जी। बल्कि ब्रह्मा जी को और कुछ याद नहीं था, यद्यपि ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत से आए हैं, आए थे, बल्कि उनको पता नहीं था कि वो कौन है और कहां से आए थे। तो ब्रह्मा जी का मन में ये भावना आया, अज्ञान में रहने के कारण सोचने लगा मैं कौन हूं, और तब उन्होंने सोचा कि अगर मुझे पता लग जाए कि मैं कहां से आया हूं, तब मैं मुझे पता लगेगा कि पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी वो कमल का जो नाल है उससे उतारने लगे, और उतारते बहुत साल तक उतारे, 1000 साल तक, फिर भी उन्होंने उसका अंत, उनका उस कमल के नाल का जो अंत नहीं मिला। वो कमल कहां से आया था, कहां से निकला था, भगवान के नाभि से, पर भगवान को तो भौतिक दृष्टि के द्वारा दर्शन नहीं होता है। यद्यपि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि के, भगवान के बहुत ही नजदीक पहुंच गए थे, फिर भी उनको पता नहीं चला कि कहां से ये कमल निकला है। अर्थात भौतिक दृष्टि के द्वारा ब्रह्मा जी भगवान को दर्शन नहीं कर सका। तो फिर से ब्रह्मा जी उस कमल के ऊपर आकर बैठ गए, बैठ के सोचने लगे मैं तो इतना कोशिश किया पर फिर हमें पता नहीं चला, तो अब मैं क्या करूं। ऐसे जब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए थे, तब भगवान उनको कृपा करके प्रेरणा दी। ये गर्भ समुद्र का जो लहर थे, वो उसको संघात के कारण एक शब्द निकल रहा था, वो शब्द था तपह, तपह, तपह। ये शब्द सुनकर ब्रह्मा जी अंदर से उनको प्रेरणा मिली कि हमें तपस्या करना चाहिए, अर्थात हमारे जो इंद्रियां हैं उसको बाहर से खींचकर अब अंतर्मुखी करना चाहिए। वैसे ब्रह्मा जी ने जब तपह के द्वारा प्रेरित हुआ, तब ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे, और उसके पश्चात भगवान का बांसुरी का ध्वनि, बांसुरी का मधुर तान उनको सुनाई दिया, और उस बांसुरी बजाकर, अर्थात बांसुरी के ये मधुर स्वर के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी को गायत्री प्रदान किए, गायत्री मंत्र प्रदान किए। पहले ये शब्द सुनाई दिया ओमकार के रूप में, ओम, और ओम से, ओम का मतलब है प्रणव, और प्रणव से गायत्री का प्रकाश हुआ, और उस गायत्री जप करने के पश्चात ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ था। ये दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश हृदय में होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयः। भगवान इस दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रदान किए थे, किस कैसे, वेद माता गायत्री के रूप में। और इस ज्ञान क्या है, कौन सी ज्ञान है, यह है वेद। तब ब्रह्मा जी को भगवत दर्शन हुआ, ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप से श्याम सुंदर श्री कृष्ण को दर्शन किए। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर रूप से हुआ है। वेणुं कनन्तम् अरविंद दलायताक्षम बरहावताम समसिताम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजाम। ये ब्रह्मा जी का वंदना है। भगवान के दर्शन के पश्चात ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं कैसे उन्होंने भगवान को दर्शन कर रहे हैं। श्यामं त्रिभंग ललितम नियतक प्रकाशम। भगवान का रूप कैसी कैसा है। श्यामं, ये श्याम सुंदर रूप है। त्रिभंग ललितम, ये इतने सुंदर रूप, तीन त्रिभंग है। त्रिभंग ललितम, त्रिभंग सुंदर रूप, बंकिम रूप, जिसलिए भगवान को बांके बिहारी कहा जाता है। तीन जगह में भगवान बंकिम है। सिर बक्ष और जानू, ये तीन जगह भगवान, ये तीन शरीर के इस तीन स्थान में भगवान बंकिम है। त्रिभंग ललितम, भगवान का कांति कैसे है। श्याम सुंदरम, जंग श्याम श्याम सुंदरम, और ओ रूप अचिंत गुण स्वरूपम, ये रूप अचिंत गुण के आधार हैं, स्रोत हैं, प्रत्यक्ष प्रकाश है। त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, भगवान क्या कर रहे हैं वृंदावन में। वेणुं कनन्तम अरविंद दलायताक्षम, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। वेणुं कनन्तम, भगवान की आंखें कैसे हैं। अरविंद दलायताक्षम, कमल दल की भांति आयत है, विस्तृत है। कमलायताक्षम, कमल अरविंद दलायताक्षम। बरहावताम, उनके सर पर मयूर की पिच्छ है। बरहावताम और समा अशितम बुद सुंदरांगम, असित वर्षा के बादल के भांति श्याम है भगवान के कांति, घन श्याम। ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान को दर्शन किया और भगवान तब ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के रूप में भागवत अर्थात ये श्रीमद् भागवतम प्रदान किए थे। चार श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को ये ज्ञान, केवल चार श्लोक बताया और वो ही है भागवतम का, भागवतम का मूल, भागवतम का स्रोत। अहम एवासम एवाग्रे, पहला श्लोक में भगवान पहले क्या बताया। अहम एवासम एवाग्रे नान्न जद सद असत परम पश्चाद अहं जदेतच्च जो वशिष्यते सुअस्मः। मैं ये सृष्टि के पूर्व में मैं था। अहम एवासम एव अग्रे, जब कुछ नहीं था। नान्न जद सद असत परम, केवल इस प्रकाशमान जगत ही नहीं, इस जगत का कारण भी जब नहीं था, उस कारण के पूर्व में भी मैं था और इस जगत के बाद, इस जगत का जब लय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा जब इस जगत, पश्चात अहं जदेतच्च, इसके पश्चात भी मैं रहूंगा। इसके पश्चात, ये सृष्टि ध्वंस होने के पश्चात जो रहेंगे वो है, वो हूं मैं। अर्थात इस भौतिक जगत के सृष्टि के साथ भगवान का अस्तित्व का कोई संपर्क नहीं है। इस सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के पालन भगवान खुद कर रहे हैं और सृष्टि के ध्वंस के पश्चात भगवान ही रहेंगे। पश्चाद अहं जदे तच्च जो वशिष्येत सो अश्मि अहं। ऐसे भगवान ब्रह्मा जी को केवल चार श्लोक के द्वारा सारे भागवतम अर्थात इस दिव्य ज्ञान प्रदान किए थे और ब्रह्मा जी के हृदय में वो चार श्लोक पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ वेद के रूप में। तब ब्रह्मा जी अपना पुत्र नारद को इस ज्ञान प्रदान किए थे, नारद व्यासदेव को प्रदान किया, व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी अपना पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किए थे। सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी उन सभा में जहां जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे तब सुत गोस्वामी वहां उपस्थित थे और सुत गोस्वामी ने उस भागवत फिर से नैमिषारण्य में जब ऋषियों ने तपस्या कर रहे थे एक 1000 साल व्यापी एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे तब सुत गोस्वामी ने उन ऋषियों को इस श्रीमद् भागवतम सुनाया। ये है भागवतम का इतिहास। भागवतम कोई किसी व्यक्ति का मन की कल्पना नहीं है, जैसे आम आदमी जैसे कुछ भौतिक विषय में लिखते हैं अपने कल्पना के द्वारा, भागवतम ऐसा नहीं। आध्यात्मिक विषय जो है वो कल्पना प्रसूत नहीं है, आध्यात्मिक विषय जो है वो दर्शन के पश्चात इसका वर्णन होता है। दर्शन, दर्शन का मतलब क्या है? सही रूप से प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने के पश्चात इसका वर्णन होता है। वो देख के बताते हैं, कल्पना के द्वारा वर्णन नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया, उसके पश्चात उन्होंने जब नारद मुनि को इस ज्ञान प्रदान किए थे, नारद मुनि भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया। मतलब दर्शन क्या? भगवत धाम का दर्शन, जहां भगवान रहते हैं उस जगह के दर्शन, उस आध्यात्मिक जगत के वर्णन उसके दर्शन के पश्चात। जैसे ब्रह्मा जी उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन कर रहे हैं, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयंतम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? ब्रह्मा जी वृंदावन दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन, वृंदावन क्या? वृंदावन एक वन है, वन, एक वन में बहुत सारे वृक्ष रहता है, बल्कि वो सारे वृक्ष वृंदावन के जो वन का जो वृक्ष हैं, वो वृक्ष कौन से वृक्ष हैं? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। वृंदावन में भगवान गाय चराते हैं अपने ग्वाल बाल के साथ, ग्वाल सखाओं के साथ, बल्कि वो सारे गाय क्यों, कौन सी गाय है? सुरभि गाय है। सुरभिर अभिपालयंतम, और वहां का जमीन जो है, भूमि जो है वृंदावन का, वो भूमि कैसी है, कौन सी है? चिंतामणि प्रकर सदमसु। वृंदावन का भूमि, वृंदावन का जमीन चिंतामणि से बना हुआ है। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, वहां का जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? चिंतामणि क्या है? चिंतामणि, अगर इस भौतिक जगत में एक चिंतामणि मिलता है, भौतिक जगत में भी चिंतामणि का प्रकाश है, वो कौन सी वस्तु है? वो है परशमणि। परशमणि के बारे में आप सोचे हैं, सुने हैं जरूर। उस परशमणि के स्पर्श से सारे वस्तु सोना बन जाता है। ये लोहा है, ये परशमणि का स्पर्श होने से ये लोहा सोना बन जाएगा। सारे और जितने सारे धातु हैं वो सारे सोना बन जाता है परशमणि के स्पर्श से, इसलिए उसको परशमणि, स्पर्शमणि कहा गया है। तो वृंदावन का सोचिए, ये एक छोटा मोटा नहीं, सारा जमीन वहां का, वहां के पत्थर, वहां के मिट्टी, वहां का सब परशमणि है, चिंतामणि। और वहां के वृक्ष हैं कल्प वृक्ष, एक दो वृक्ष नहीं, सारे वृक्ष, जितने सारे वृक्ष हैं वो सारे सब कल्प वृक्ष हैं। अच्छा, कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष के पास जाकर हम जो कुछ मांगते हैं वो मिल जाता है। साधारण वृक्ष से क्या मिलता है? फल मिलता है, फूल मिलता है, बल्कि कल्प वृक्ष से सब कुछ मिल सकता है। कल्प वृक्ष, तो वैसे वृंदावन का वन जो है कोई साधारण वन नहीं है, वो कल्प वृक्ष का वन है। और गाय, सुरभि गाय क्या है? सुरभि गाय, सुरभि का बच्ची इस भौतिक जगत में है, उसका नाम है, उसकी नाम है नंदिनी। नंदिनी वशिष्ठ जी के आश्रम में, वशिष्ठ जी के पास नंदिनी रहती है। इस विषय में आप जरूर सुने होंगे, एक समय विश्वामित्र जो राजा थे, जंगल में मृगा करने के लिए गए अपने सैनिकों के साथ, और रास्ता खो गया जंगल में, आपका दिशा खो बैठे, तो ऐसे घूमते घूमते वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आ गए। तो आप बहुत थके हुए थे, प्यास लगा हुआ था, भूख लगा हुआ था सबको, कोई दिन से कुछ खाना नहीं मिला। तो वशिष्ठ ने उनको बोला, आप जाइए नदी में नहाकर आइए, आपका खाने का बंदोबस्त मैं कर रहा हूं। विश्वामित्र के साथ बहुत सारे सैनिकों भी थे, 100-200 सैनिक होगा। तो अपने जब नहा के सोचा, क्या ये मुनि का आश्रम है तो क्या मिलेगा यहाँ? शायद थोड़ा कुछ फल मिलेगा और पानी मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा गाय का दूध मिलेगा शायद। बल्कि जब नहाकर जब आया तो देखा कि ऐसा एक आयोजन वहां बना है जो विश्वामित्र राजा होते हुए भी वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ये कहे, मैं राजा हूं, मेरे लिए भी ऐसा आयोजन संभव नहीं होता। और जब खाना शुरू किया तो देखा कि इसका स्वाद जो है, उस जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं खाया उसको उनने। तो उन्होंने सोचने लगा, ये कैसे संभव? और भी क्या, जो सर्वे जो हुआ था, सर्व किया था कैसे? सोना के थाली में वो हीरे मोती का एम्बेडेड सोना का थाली में उसको ये दिया गया। तो उन्होंने पूछा, आप ऐसे आयोजन कैसे किए हैं ये बन के, ये जंगल के अंदर? तब वशिष्ठ ने सरल भाव से बताया, देखिए मेरे पास एक गाय है, वो है नंदिनी। नंदिनी के पास हम जो कुछ मांगते हैं वही मिल जाता है। तो आप लोग आए हैं, मैं सिर्फ नंदिनी के पास जाकर बोला कि मेरे मेहमान आए हैं तो उनको खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। मैं कुछ नहीं किया, सब कुछ नंदिनी ने ही किया है। तो विश्वामित्र जब नंदिनी को देखा तब वशिष्ठ को बोला, देखिए इस गाय का तो जरूरत आपका नहीं है, आपसे ज्यादा जरूरत इसको इसके मेरा है तो आप इसे हमें दे दीजिए। वशिष्ठ बोला, देखिए ये तो ये मेरे बेटी जैसी है, इसको मैं नहीं दे सकूंगा। विश्वामित्र ने बोला, देखिए आपको मैं लाखों गाय दूंगा, इसको आप दे दीजिए। वशिष्ठ नहीं माना। तब विश्वामित्र ने बोला, ये यद्यपि ये ऋषि हैं, त्यागी हैं, परंतु इसका लालच बहुत ज्यादा है, तो चलो ये हमको नहीं देंगे तो चलो इसको जबरदस्त इस गाय को हम ले जाएंगे। तो सिपाही को निर्देश दिया, आदेश दिया कि चलो इसको लेके बांध कर चलो इसको ले जाएंगे। तो जैसे बलपूर्वक नंदिनी को लेने का कोशिश किया कर रहे थे, तो नंदिनी रोने लगी और वशिष्ठ को बोला, देखिए आप मेरे पिता जैसे हैं और आपका आपके समक्ष आपका बेटी का ऐसे निर्जातन हो रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे? तो वशिष्ठ ने बताया, देखो मैं तो ब्राह्मण हूं, हिंसा मेरा कार्य नहीं है, बल्कि तुम अगर आत्मरक्षा करने को चाहते हो तो तुम कर सकती हो, मैं तुमको रक्षा नहीं कर सकूंगा, बल्कि तुम अगर चाहो तो तुम अपने आप को रक्षा करो। बस नंदिनी केवल ये निर्देश का ही प्रतीक्षा कर रही थी, तो उस समय नंदिनी ने एक आर्मी बनाया, एक सेना वाहिनी नंदिनी से निकल आया और वशिष्ठ को सारे सेना को उसको हराकर उसको वहां से भगा दिया। इसके कारण वशिष्ठ का विश्वामित्र को पता चला कि ब्राह्मण का जो तेज है, ब्रह्म तेज, वो क्षत्रिय तेज से अधिक है, तो इसलिए विश्वामित्र ब्राह्मण बनने चाहा और बाद में बना भी। विश्वामित्र बाद में ऋषि बन गया, बहुत कोशिश करने के बाद, 64,000 साल का तपस्या विश्वामित्र का नष्ट हो गया था। इंद्र ने मेनका को भेजा था और मेनका के उद्यन कर रहे थे, देखिए 64,000 साल तक ध्यान किया, आंखें खोला नहीं, ध्यान हो रहा था, बल्कि मेनका जब उनके सामने नाचने लगी, वो आंखों से नहीं देखा, बल्कि उनका जो नूपुर का जो आवाज, वो आवाज उनका कान से प्रवेश किया और उसके प्रभाव से उनका आंखें खोल गया और आंखें खोलते ही सामने मनुका को दर्शन हुआ। बस 64,000 साल का तपस्या खत्म हो गया और उसके परिणाम स्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ। ये तो महाभारत में इसका वर्णन भारत की इतिहास में हुआ है। तो देखिए एक सुरभि के लड़की के इतनी प्रभाव, तो देखिए कृष्ण का कितने सारे गाय हैं, 90 लाख गाय हैं कृष्ण का, तो ये गाय कृष्ण चराते हैं, तो वो सारे गाय हैं सुरभि, केवल कृष्ण का ही नहीं, वृंदावन में जितने सारे गाय हैं सब ये सुरभि गाय, सुरभिर अभिपालयंतम। तो इसका वर्णन ऐसे हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कोई कल्पना नहीं है, हम अगर सोचेंगे कि ये कोई व्यक्ति का मन की बनाया हुआ कल्पना का वर्णन है तो हम इसका फायदा उठाने में फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसको पूर्ण रूप से फायदा उठाने के लिए हमको सही रूप से ग्रहण करना होगा कि वेद में, उपनिषद में, पुराणों में जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ वर्णन हुआ है, सब एकदम ध्रुव सत्य है। वेद में कहीं भी मिथ्या का अवकाश नहीं है। तो इस वेद के माध्यम हमें क्या मिलता है? वेद के अनुसरण करने से हम इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का सुयोग प्राप्त होगा। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, केवल प्रवेश ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ प्यार के संपर्क स्थापन करने का अवकाश हमें मिलेगा। और इससे फायदा क्या होता है? भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से, भगवान के साथ प्रेम का संपर्क जोड़ने से हमें आनंद मिलेगा। केवल आनंद का छोटे एक दो कर्ण नहीं, एक आनंद के सागर में हम डूब जाएंगे। हम सब आनंद के अन्वेषण कर रहे हैं, बल्कि आनंद प्राप्ति के उपाय क्या हैं? आनंद प्राप्ति के उपाय हैं भगवान के साथ संपर्क जोड़ना। और ये संपर्क की आधार है प्रेम, और उस प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। जब प्रेम, हृदय का प्रेम जब भगवान के प्रति अर्पण होता है, अर्पित होता है, तब उसे भक्ति कहा जाता है। और इस भक्ति के द्वारा ही केवल हम भगवान को जान सकते हैं, हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान कह रहे हैं गीता में, भक्ति के द्वारा ही केवल हमें अभिजानाति, पूर्ण रूप से हमें जान सकते हैं कोई। भगवान और भी कह रहे, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तम, ये उत्तम रहस्य मैं तुम्हारे समक्ष प्रकाश कर रहा हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। जो भक्त नहीं है उनके पास भगवान अपने आप को प्रकाश नहीं करते। और भक्त के पास भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं। परमेश्वर भगवान यद्यपि अजेय हैं, अजित हैं, जिनको कोई जय नहीं कर सकते, कोई भी हरा नहीं सकता है, भगवान भक्ति के समक्ष हार स्वीकार कर लेते हैं, हार जाते हैं। भक्ति के द्वारा भक्त भगवान को जय कर अपना बना लेते हैं, जैसा कि भगवान को वो, यद्यपि भगवान अजित हैं, बल्कि भक्त के समक्ष भगवान पराजित हो जाते हैं, भक्त के वश में आ जाते हैं, भक्त के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं। भगवत श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य वही है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? उसको दीजिए, उनको दीजिए। हाँ, ओ अच्छा, ओके। किसका फंक्शन?
हार्ट।
अच्छा, हृदय।
व्हेन कृष्णा से कि आई एम विद इन द हार्ट, तो व्हाट एग्जैक्टली ही मीन?
एग्जैक्टली इट मीन्स एग्जैक्टली दैट, भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। जैसे उपद्रष्टा अनुमानता च सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है, और भगवान क्या कर रहे हैं, उपद्रष्टा देख रहे हैं कि जीव क्या कर रहे हैं, और उनके अनुसार उनको वासना को फल प्रदान करते हैं, अनुमानता अनुमोदन करते हैं। हम लोग चाहते हैं और भगवान अनुमोदन करते हैं, जो कुछ चाहते सब कुछ नहीं मिलता है, जो भगवान जो अनुमोदन करते हैं वही केवल हमें मिलता है। और इस परमात्मा के कारण ही जीव का मत्त स्मृति, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और ज्ञान की विस्मृति होता है, ये परमात्मा के प्रभाव से। परमात्मा के रूप में भगवान क्यों विराजमान है, क्योंकि भगवान, हम भगवान को छोड़ के चले गए, बल्कि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास फिर वापस आ जाए। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनके पास वापस जाएंगे, कब हम हमारा मुंह उनकी तरफ मोड़ेंगे। तो इसलिए भगवान हमारे साथ आ रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनकी ओर मुंह फिराएंगे, और तब भगवान हमें अपने पास बुला लेंगे। इसलिए ही भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विराज कर रहे हैं। गिव द माइक। Generally, he does not. I mean, generally, it's only in the human form of life that one gets this opportunity. But Krishna is all powerful. Krishna is completely independent. Although the law is that only the human form gets that opportunity to develop a relationship, but if he wants, he can award that facility to others as well. And his devotees, his pure devotees also can award that opportunity. Like for example, when Chaitanya Mahaprabhu was traveling towards Vrindavan through the forest of Jharkhand, the wild animals were dancing, chanting Hare Krishna. Did they get liberated? Did they develop a relationship with him? Sure they did. Narad Muni instructed a snake. To become a devotee. So even a snake could become a devotee. And when he became a devotee, could he develop his relationship with Krishna? Yes. Nag Patnis, the wives of Kaliya, all those snakes, they also developed their loving relationship with Krishna. So it can happen by the mercy of the Lord and his devotees. But generally, this opportunity is available only in the human species, in the human form of life. अच्छा, तुम्हारा प्रश्न का और एक ये बाकी रह गया, मैं बताया नहीं। तो परमात्मा, जब हम भगवान की ओर मोड़ते हैं, भगवान के प्रति उन्मुख होते हैं, भगवान से विमुख होने के कारण हम इस भौतिक जगत में गिर गए। जब हम भगवान से विमुख होकर भगवान को त्याग कर हम जब यहां आए हैं, तो हम यद्यपि हम भगवान को छोड़ के चले गए, बल्कि भगवान हमारे साथ आ रहे हैं। जहां भी हम जा रहे हैं भगवान चल रहे हैं, भगवान है, बल्कि हम उनको देख नहीं रहे। तो जब हम आशा करते हैं उनके प्रति, जब हम उन्मुख होते हैं, तब भगवान हृदय से इस ज्ञान को प्रकाश करते हैं। पहले भगवान अपना भक्तों के अपना संघ प्रदान करके उनको इस मार्ग में लाते हैं और धीरे धीरे हृदय में इस दिव्य ज्ञान प्रकाश करवाते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का हुआ, हर व्यक्ति का भी ऐसा हो सकता है अगर इस भक्ति के पंथ अनुसरण करके भगवान के पास जाने का उत्सुक होते हैं। Give him the mic. वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। कर्म मिश्रा भक्ति, निष्काम भक्ति और शुद्ध भक्ति। भक्ति तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के आप जैसे, और भक्ति का और भी कोटि हो सकता है, जैसे ज्ञान मिश्र भक्ति और अच्छा कर्म मिश्रा भक्ति। कर्म क्या है? भोग करने की इच्छा लेकर जो कार्य हम करते हैं उसे कर्म कहा जाता है। खुद भोग करने के लिए जो कार्य हम करते हैं उस वो है कर्म। बल्कि इस कर्म जब भक्ति के साथ मिश्रित होता है तो इस कर्म का फल भगवान को निवेदन होता है, जिसे कर्म योग कहा जाता है। जिस कर्म के द्वारा हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ सकते हैं उसे कर्म योग कहा जाता है या कर्म मिश्रा भक्ति कहा जाता है। भक्ति हो रहा है, भगवान के प्रति प्रेम है, बल्कि साथ साथ कर्म करने का भी इच्छा रह जाता है, कर्म फल भोगने का वासना रह जाता है, तो इसे कर्म मिश्रा भक्ति कहा जाता है। निष्काम, जब कोई कामना त्याग कर कोई कामना नहीं रहता है, भगवान के सेवा करने के लिए ही जब हम सेवा करते हैं वो है निष्काम भक्ति। और जब हार्दिक प्रेम के द्वारा भगवान के प्रति आकृष्ट होकर भगवान को प्रसन्नता के लिए, भगवान हमारे भगवान के प्रति हमारा प्रेम प्रदर्शन करने के लिए जब हम उनको सेवा में लग जाते हैं और प्रेम के बिना और कोई 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 उद्देश्य नहीं रहता है तो उसे शुद्ध भक्ति कहा जाता है। तो यहां निष्काम भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर क्या है? निष्काम भक्ति में कामना रहित, कोई भौतिक कामना, कोई भौतिक वासना नहीं रह गया, कामना शून्य होकर हम कर रहे हैं, बल्कि वहां कर्तव्य के अनुसार ये हो रहा है, प्यार के नाते नहीं हो रहा है। कर्तव्य के अनुसार जब ये हो रहा है तब वो निष्काम भक्ति, निष्काम तक पहुंच सकता है। बल्कि जब प्यार के कारण, प्यार के लिए, शुद्ध प्रेम के लिए जब हम भगवान को सेवा करते हैं वो है शुद्ध भक्ति। तो गृहस्थ में रहकर कैसे हम बन सकते हैं? देखिए अर्जुन से और श्रेष्ठ दृष्टांत क्या हो सकता है। अर्जुन केवल गृहस्थ ही नहीं, अर्जुन क्षत्रिय है, उसका पेशा है लड़ाई करना। अब किसके साथ लड़ाई करना है? अपने गुरु के साथ, अपने दादा के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ लड़ाई करना है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं ये लड़ाई, कथं भीष्मं अहं संखे द्रोणं च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्सामी पूजार्ह वरिषूदन। कैसे, कथं, कैसे मैं इनके प्रति बाण निक्षिप करूंगा, ईशु भी प्रतियोत्सामी, क्योंकि ये मेरे गुरु है, मतलब गुरुजन है, भीष्म मेरा पितामह है, द्रोणाचार्य मेरा गुरु है, ये हमारे पूजनीय है, ये हमारे श्रद्धा के पात्र हैं, इनको पूजा करना चाहिए। कैसे हम उनको इसके प्रति बांध निक्षिप्त करेंगे? बल्कि अंत में हम क्या देख रहे हैं, ये कहकर अर्जुन ने अपना बांध त्याग दिया। ये कहकर एवं इक्ता ऋषिकेश गुराकेश परंतप न योत्सम इति गोविंद उक्ता तुष्णिम बभुव। बयान त्याग दिया और चुप से वहां बैठ गए। कृष्णा ये लड़ाई में नहीं कर पा, बल्कि भगवान क्या बताया, देखो अर्जुन तुम जो कह रहे हो बहुत पंडित जैसे बातें कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा कुछ ज्ञान नहीं है। ये कहकर भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात अर्जुन का मनोभाव कैसा हुआ, कृष्ण तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। अर्थात किसी भी स्थिति में रहकर जब हम भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करते हैं, अपना जिंदगी गुजारते हैं, अपना कर्तव्य संपादन करते हैं, वही है भक्ति, भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करना। तो अर्जुन अगर कुरुक्षेत्र के रणक क्षेत्र में ये भक्ति संपादन कर सका तो हमारा क्या कहना। इसका मतलब कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकते हैं, केवल अपना हार्दिक प्रेम के द्वारा भगवान को सेवा में युक्त होकर भगवान को सेवा करना। हरे कृष्णा। या अशुद्ध शूद्र कल्पा ही ब्राह्मणा कलि संभव। इन द एज ऑफ कलि इवन द ब्राह्मणर्स हैव बिकम इम्प्योर अशुद्ध एज द शूद्रस, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर्स। सो इन द एज ऑफ कलि एवरीवन इज प्रैक्टिकली बिकम शूद्र। सो फ्रॉम द शूद्र प्लेटफॉर्म प्रभुपाद इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम अप टू द ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म। ही इज क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटी, he is providing the facilities, but it's not going to happen overnight. Really it'll take a few generations. So let us start from there, that we are Shudras. So from that platform let us try to render some service to Krishna and let's try to spread this movement. And then whatever is necessary we are prepared to do that. That's the qualification of a devotee, Vaishnava. Vaishnava doesn't act according to his varna. Vaishnava acts according to the need to serve Krishna. If it is necessary to serve Krishna, we have to sweep the streets, we'll do that. Less intelligent people may not understand that. Like for example, when the king of Karnat was thinking of getting his daughter married to the king of Orissa. But when he came and he found that the king of Orissa is sweeping the road for Lord Jagannath, sweeping the street in front of Lord Jagannath, then he saw that he is a bhangi. He is a sweeper. So I don't want to give my daughter to him in marriage. But he didn't realize that he is a Vaishnava and he is prepared to do anything for the pleasure of Krishna. He was not sweeping for anybody else. He was sweeping the streets for Krishna's pleasure. If he wanted, he could have appointed 1,000 sweepers to clean the road, to sweep the road. But it's due to his love for Krishna that he was doing that. That king couldn't understand. And Krishna took insult on that. Oh, you offended my devotee. So Krishna and Balaram went and fought with him and defeated him. So that is how the Supreme Personality of Godhead reciprocates with his devotee's love. Okay. Give him the mic.
जैसे भगवान बोले कहते हैं स्त्री और क्षुद्र तो एग्जैक्टली स्त्री इज अ बॉडी कंसेप्ट और बाय कॉन्शियसनेस जैसे भगवान कहते हैं कि वो भी भक्ति कर सकती है तो ये बताइए कुछ
या भक्ति इज फॉर एनी बॉडी. You see, the other practices, the Vedic rituals, are meant for the Brahmanas. The Vedic activities are generally the activities of the Brahmanas. But bhakti is something that, what to speak of stri or vaishya or sudra, even the chandal can perform bhakti. And when a chandal performs bhakti, he becomes superior to a Brahmana. Chandalopi Drijasreshta Hari Bhakti Parayana. If a chandal becomes a devotee, bhakta of Krishna Hari, then he becomes superior to a Brahmana. Dijasreshta. Dijat Api Sreshta. He is superior to even a Brahmana. So that is the understanding. Another understanding is that, you see, in this age of Kali, everybody is a Sudra. So when everybody has become a Sudra, maybe Stris are superior to most of them. It is not that the Stris are inferior. In the community of Sudras, the Stris are superior to the men. In many cases. And we are seeing that. In many respects, the women are more advanced than the men. Especially when, that's what I was actually addressing yesterday in that meeting with the Matajis. That when it comes to bhakti, they are more advanced than men. Because their natural characteristic is as such. They have soft heart. And in that soft heart, the love for Krishna develops very easily. So that is how, you see, this all these other considerations are physical consideration, intellectual consideration, brains consideration, which is also physical. Kshatriya is physically very strong. Brahmins are intellectually very strong. Kshatriya's body is very powerful, a Brahman's head is very powerful. But for to become a devotee, we don't need a strong body or a strong head. What do we need to become a devotee? A soft heart. All we need is a soft heart. So, and when one has that, he can become a devotee. And to cultivate a soft heart is not difficult. We simply have to make it, to make the heart soft is not difficult. We simply have to get rid of the hardness and it will become soft. So that's why this bhakti is meant for anybody. This Hare Krishna Mahamantra, when Mahaprabhu gave that Mahamantra, he said that Prabhu kahe kohilam ei Mahamantra. ইহা জপে ইহা সবে জপ গিয়া করিয়া নির্বন্ধ ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে তোমার সর্বক্ষণ বলো ইথে বিধি নাই. মহাপ্রভু গেভ দ্য মহামন্ত্র অ্যান্ড হি গেভ দ্য ইনস্ট্রাকশন দ্যাট ইউ জাস্ট চ্যান দিস মহামন্ত্র দের ইজ নো রেস্ট্রিকশন অফ দ্য স্ক্রিপচারাল ইনজাংশন. So this is, anybody can do it. Right? No restrictions whatsoever. And he is saying also that achan jivha sparshe achan dale shabare uddhar. That this Mahamantra is so powerful that just by coming in contact with the tongue, jivha, achandale, achandale means up to the chandal, everybody can be delivered. Just by chanting the holy name of the Lord. So that is how powerful bhakti is. Okay, thank you all very much. Hare Krishna. Gaur Premanande Hare.